अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं नाम्ने गौरद्विजे। मैं सब प्रथम आप लोगों से कन्नड़ भाषा नहीं जानने की वजह मैं हिंदी भाषा में ही बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें। एक बार आज से करीब करीब 5,000 वर्ष पहले दिव्य क्षेत्र नमिषारण्य में भारतवर्ष के सब ऋषि महर्षि 18,000 ऋषि महर्षि एकत्रित हुए थे और उसमें सौनकादि ऋषियों ने महर्षियों ने शुद्ध गोस्वामी से कहा, ये आप महाराज सुखदेव गोस्वामी के शिष्य, अपने वेद शास्त्र उपनिषद रामायण पुराण इत्यादियों का सार जो श्रीमद् भागवत में ही है आप लोगों ने उनसे सुना है। कलयुग आ गया है, इसमें मंदा सुमंद मतयो मंदभाग्या ही उपद्रव, कलयुग में आई बहुत छोटी हो जाएगी और लोग बड़े दुर्भागा होंगे और सुमंद मतयो अच्छे के लिए कर्म करेंगे बुरा हो जाएगा और तरह तरह के पाप है, पुनः पुनः जन्म मरण बुढ़ापा बुढ़ाके तक का जो दुख है यह सब भोगना पड़ता है। इसलिए आप सबका सार ब्रूहितन में जयात्मा संप्रसीद, आत्मा कैसे प्रसन्न होती है आप कृपा करके बोलिए। श्री सूत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी की चरण वंदना है और वंदना करने के बाद में बतलाया, सवै पुंसो परो धर्मो जतो भक्ति खजे अहे दुख प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। इसी को रूप गोस्वामी ने अन्नाभिलाषता शून्य ज्ञान कर्म अनादृतम अनुकुलीन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, तात्पर्य क्या, कृष्ण को प्रिय लगे ऐसी तन मन वचन और इसके अतिरिक्त भावना से उनकी चेष्टाओं से अनुकूल को ग्रहण का प्रतिकूल रूप में जो चेष्टाएं होती हैं उसको भक्ति कहते हैं। उसमें भी अनु नैरंतरमयी तेज तेज धारा मत विच्छिन्न गति से कृष्ण के चरणों में लगने वाली हो। हरि गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में हो, इसको भक्ति कहते हैं, किंतु उत्तमा भक्ति नहीं कहते। उत्तमा भक्ति उसी को कहते हैं जिसमें अल्पता विलासिता शून्य, कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई भी अभिलाषा हमारे हृदय में न हो, लौकिक कोई भी भावना न हो, और वह भक्ति कर्म ज्ञान योग से आच्छादित न हो। मनुष्य जन्म रहने पर कर्म की जरूरत है, किंतु कर्म के द्वारा भक्ति होती है, भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, ऐसा नहीं तो वो कर्म से ढक जाएगा। ज्ञान योग तपस्या इत्यादि से भक्ति नहीं होती, भक्ति स्वतंत्र है। इसलिए भक्ति की कृपा से ही भक्ति होगी। यहां तक कि लिखा गया है शास्त्रों में भगवान की कृपा से या उनके भक्तों की कृपा से भक्ति होती है, ये भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। भगवान यदि किसी को भक्ति देते हैं और किसी को नहीं, तो उनमें उनमें निरपेक्षता समदृष्टता का अभाव होता है। और उत्तम भागवत भी वैसे ही नहीं दे सकता है, केवल मध्यम अधिकारी भक्त जिसके अधिकार में है प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा सब मध्यम, यही भक्त मध्यम अधिकारी दे सकता है भक्ति। इसलिए यदि कोई उत्तम गुरु भी होता है तो मध्यम श्रेणी में उतर कर मध्यम भक्त बन करके दीक्षा हरियाम दे करके जगत का उद्धार करता है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसलिए ये भक्ति है। नाउ कैन यू ट्रांसलेट
ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ शिक्षा करना और इस प्रकार से 64 भक्ति के अंग हैं। उनमें से 9 प्रकार की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिमित्त और उसमें भी 3 नाम संकीर्तन स्मरण और श्रवण। पहले श्रवण तब कीर्तन इसके पश्चात में स्मरण। इन तीनों भक्तियों में भी नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं ये कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है। चाहे तो 1 सेकंड में सारे विश्व ब्रह्मांड को लेकर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की नई सृष्टि कर सकते हैं। कृष्ण बड़े अहैतुकी दयालु हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं। इसलिए उन्होंने अपने 16 नामों में अपनी सारी शक्तियां दे दी। वेद जन्म जन्मांतरों के जन्म मृत्यु के कष्ट से हमें छुटकारा दे सकते हैं और साथ ही वे कृष्ण प्रेम भी ये नाम दे सकेंगे। हरिनाम का कलयुग में विशेष महत्व है, उसमें भी उपनिषदों में कलिसंतान उपनिषद में बतलाया गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। चकले चलते फिरते उठते बैठते टहलते हुए जैसे भी नाम हो, जितना भी ऊंचा स्वस्थ होगा तो पशु पक्षी कीट पतंग घास पेड़ पौधे भी सुनेंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। कोई परिश्रम नहीं नाम करने में है। और संप्रदायों में हमारे मुस्लिम भाई लोग कितने बार 100 बार उठक बैठक दंडवत ये सब कितना करते हैं, हमें वो भी नहीं। बस नाम संकीर्तन होने के साथ ही साथ संसार से उसकी मुक्ति और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ में नाम करना चाहिए। हमारे सनातन गोस्वामी ने भक्तों को भक्ति के तारतम्य से पांच भागों में विभक्त किया। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। भक्ति के तारतम्य से जब विचार किया जाता है तो ध्रुव की भक्ति सकाम भक्ति है। उन्होंने राज्य के लिए, अपने पैतृक संपत्ति के लिए, राजगद्दी पर बैठने के लिए भगवान की उपासना की और 6 महीने में ही उनको प्राप्त कर लिया। भगवान ने 36,000 वर्ष का साम्राज्य पृथ्वी का दे दिया है और इसके बाद में संसार त्याग करने के बाद में अपना ध्रुव लोक जो किसी को नहीं दिया, जिसकी परिक्रमा सप्तर्षि और सूर्य सभी लोग करते हैं वो दिया। किंतु मरते समय में, शरीर छोड़ते समय में अपनी माता को स्मरण किया, गए कहां, इसी ब्रह्मांड के भीतर एक ध्रुव लोक है जिसकी सप्तर्षि और सूर्य इत्यादि सभी लोग जिसकी परिक्रमा करते हैं उसी लोग को दिया। गोलोक बैकुंठ या और सब जगहों में नहीं दिया। इसे श्रेष्ठ बतलाया कि ज्ञानी भक्त सकाम नहीं है। प्रहलाद महाराज सकामी भक्त नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांगो तो उन्होंने कहा कि मैं बनिया नहीं हूं जो आपसे कुछ मांगू, इसलिए आपकी भक्ति नहीं की। यदि कोई हमारी मांगने की इच्छा हो हृदय से निकल जाए, फिर भी कहा जब पिताजी का उद्धार हो जाए तो वो भी हो गया है। जिस कुल में एक वैष्णव होता है, उत्तम वैष्णव होता है, उसकी 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाती है और जिसमें मध्यम भक्त होता है 14 और जिसमें साधारण भी कनिष्ठ भक्त भी हो उसकी 7 पीढ़ियां के माता पिता सबका उद्धार हो जाता है। नृसिंह भगवान गोदी में लेकर के रोने लगे, मुझे आने में विलंब हो गया। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी निष्काम भक्त हैं। वे समस्त जगत में भगवान को और भगवान में अपने इष्ट देव को देखते हैं, इसलिए ये इनसे भी श्रेष्ठ कौन है? शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज अपने समस्त अंगों से मन से भगवान का स्मरण करते, कानों से भगवान की हरि कथा सुनते, हाथ से ठाकुर जी का मंदिर अपने आप मार्जन करते, दंडवत प्रणाम उनको करते अष्टांग भाव से, इस प्रकार से अपने 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा करते।
ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन,
अच्छा ट्रांसलेशन, अम्बरीश महाराज जी से भी प्रेमी भक्त हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, संसार में कोई भी इनका मोह नहीं है, भगवान की बिना सेवा के एक सेकंड भी नहीं रह सकते। एक समय राम के छोटे भाई भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चारों ने मिलकर के विचार किया। दिन रात हनुमान उनकी सेवा करता रहता है और हम लोगों को कोई सुजोग नहीं मिलता, इसलिए हम लोग सभी सेवाएं दिन और रात का बांट लें और इसी सेवा इसकी कोई भी सेवा न दी जाए। मिलकर के दिन और रात का अपना हिस्सा बटा लिया। हनुमान जी ने सोचा कि हमको कोई नहीं सेवा दे रहे, सेवा के बिना तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए उन्होंने कहा कि एक बात हमको करो, एक सेवा मैं करूंगा, जब राम को जम भाई आएगी तो मैं चुटकी बजाया करूंगा। अच्छा ठीक है, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, घर के बाहर में रहकर और हनुमान जी चुटकी बजा लेंगे और राम को जम भाई, जब पर जम भाई आने लगी खाना पीना सब कुछ उनका बंद हो गया। अंत में राम ने कहा अरे भाई उसको कुछ सेवा दे दो, नहीं तो तुम लोग कोई भी सेवा नहीं कर सकते। तब उन्होंने हनुमान की जो सेवा थी सब सेवा दी। एक समय सीता जी श्रृंगार भवन में थी, सिंदूर लगाया और कपड़े पहन करके बाहर में निकले। हनुमान जी ने पूछा जे माता जी तुम कहां गई थी? उन्होंने कहा जब मैं श्रृंगार कर रही थी, अभी दरबार में जाना है, राम के पास में बैठना है,
तो ये क्या लगा लिया सिंदूर? तो मैंने कहा कि ऐसा लगाने से पति सौभाग्य, वो सौभाग्यवान होता है और पत्नी सौभाग्यवती होती है। अच्छा ठीक है,
लंबा जीवन आयु मिलता है
और पति की लंबी आयु मिलती है। हनुमान जी ने सोचा ठीक है। सीता जी श्रृंगार भवन से निकली और हनुमान जी श्रृंगार भवन में पहुंचकर सारे शरीर में सिंदूर लगा दिया और राजसभा में आए। अरे हनुमान जी तुमने क्या किया? तो मैंने सिंदूर लगाया। क्यों? इसलिए लगाया यदि आयु बढ़ती है राम की इससे लगाने से, तो मैंने सारे शरीर में ही लगा दिया। देखिए कैसे राम जी की सेवा करते हैं, उनका वाहन बन करके अपने कंधे पर बैठा करके राम लक्ष्मण को ले जाते हैं। राम लक्ष्मण के लिए वनवास के समय में फूल मल कंद इत्यादि सभी लेकर के उनको खिलाते थे। लंका युद्ध के समय में अपने पूंछ का परकोटा बना करके रक्षा करते थे। जब लक्ष्मण को सेल लगी तो लंका से झट पहुंच करके
सुसन वैद्य को ले आए।
फिर उसके परामर्श से
गंधमादन पर्वत
पर जहां पर की संजीवनी बूटी मिलती थी उसको उखाड़ ले आए एक हाथ पर। इस प्रकार से वो जड़ी बूटी से बना करके जब औषधि दी तो लक्ष्मण की सेल शक्ति। इस प्रकार से राम की सब सेवा
जो नागपास में बांधा तब जाके दुर्ग को बुला ले आए।
इसके बाद में इनसे भी श्रेष्ठ हैं पांडवगण। हनुमान जी राम के साथ में एक पलंग पर नहीं बैठ सकते, उनको आलिंगन नहीं कर सकते, अपना जूठा नहीं खिला सकते, किंतु पांडव लोग कैसे हैं? पांडवों ने अपने प्रेम से कृष्ण को वशीभूत कर लिया और अर्जुन और
कृष्ण
दोनों एक ही पलंग पर सोते हैं। कृष्ण का एक पैर अर्जुन के छाती से होते हुए दूसरे तरफ में जाता है और उसको रुक्मिणी सत्यभामा दबाती है, चामर इत्यादि करती है, और दूसरे तरफ कृष्ण का पैर अर्जुन की छाती से जाता है और उसको
सुभद्रा
और
द्रौपदी
जी चमक ढुलाती है और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकलता। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन के साथ में कर दिया। इतना यह अधिक है तो भी कभी कभी युद्ध में जब विश्वरूप देखते हैं अर्जुन हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु आप विश्व नियंता हैं, आपको मैंने जो सखा कहा है भाई कहा है, युद्ध में आपको सारथी बनाया और जैसे कहता था वैसे किया, आप हमें क्षमा कीजिए। इसलिए इनसे श्रेष्ठ उद्धव है, सब समय कृष्ण के मंत्री हैं, सखा है, भाई है, सेनापति है, बंधु है, सब कुछ है, किंतु ये उद्धव भी वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर गोपियों के पास में गए। कृष्ण ने भेजा उद्धव तुम जाओ जहां मैंने प्रेम की पाठ सुना है सीखा है वो प्रेम की पाठशाला में विद्यालय तुम जाओ, वहां पर श्रीमती राधिका जी प्रिंसिपल हैं और विशाखा ललिता विशाखा इत्यादि सखियां एक एक डिपार्टमेंट की ही हैं। गए किंतु गोपियों ने पाठशाला में विद्यालय में भर्ती नहीं किया। उद्धव से पूछा, उद्धव बतला सकते हो? प्रेम दो प्रकार का होता है, एक निस्वार्थ प्रेम और एक स्वार्थ प्रेम। स्वार्थ प्रेम का यह उदाहरण है, जैसे वेश्या किसी को प्यार नहीं करती, अर्थ से उनका प्यार है, जब किसी को सब कुछ ले लेगी निकाल देगी, अपने पास नहीं रखेगी। चिड़िया घोंसले में रहती है, घोंसला जल जाए बल जल जाए तो पक्षी वहां नहीं रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा करने के लिए जाता है गुरु आश्रम में, शिक्षा समाप्त हो गई अब गुरु की तरफ में मुख फेर करके नहीं देखेगा। भौरा फूलों पर रस लेता है और रस लेने के बाद में फिर दूसरी जगह उड़ जाता है। बताओ उद्धव, कृष्ण से हमारा प्रेम निस्वार्थ था, यह कैसे टूट गया? उद्धव जी सिर खुजलाने लगे और विचार ही नहीं कर सके ये कैसे हुआ। तब उद्धव जी इस विद्यालय में दाखिल नहीं हुए। उद्धव जी वृंदावन की एक लता गुल्म कुछ भी नहीं बन सके। प्रार्थना की, आशाम हो चरणे जुषाम हम श्याम वृंदावने किमप गुल्म लतौ सजीना जगदत्त स्वजन आर्य पतंच हित्वा भेजे मुकुंद पदवेंग सुति भेंग। मैं वृंदावन में कहीं एक गुल्म लता भी हो जाऊं जिसमें गोपियां चले तो उनके चरणों की धूली हमारे सिर पर। वंदे नंद ब्रजे श्री राम पाद रेणु अभिक्षण सा जासाम हरि कथो गीत पुअनाथ भो नत्र। ओ नंद बाबा के जितने हैं घर में उन सभी को हमारा बार बार प्रणाम है। उनकी एक चरण धूली की मैं वंदना करता हूं, जिसके विरह के गान से सारा विश्व धन्य हो गया। ट्रांसलेशन,
प्रेमी भक्ता प्रहलाद महाराज मित्र श्रेष्ठ वाले कहता भक्त हनुमान प्रेमी भक्ता
हनुमान
और बाल ब्रह्मचारी ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಎಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ರಾಮನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಹೋದರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾದೇವಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹನುಮಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಮರಣನೇ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ರಾಮ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತು ನಾನು ಅದೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು राम में नाम और निरंतर और विलक्षणता है, कितनी हो जाए इतने ऐसे थे हनुमान लक्ष्मण ऐसे थे राम यावल आकर के नावल कितनी हो रही थी आज है हनुमान ऐसे थे राम ने यावल आकर आकर के करते हैं बच्चे राम ने यावल में मरे थे ऐसे ने आज मरे थे ऐसे राम ने निरंतर और आकर के करते थे आओ का बूटा बंदी ये खाने के मारे जाते थे आओ का सीता देवी लक्ष्मण ಇತರ ಸಹೋದರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏನು ದೇವ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನಿರಂತರ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಅವನ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಹನುಮಾನ್ ರಾಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹನುಮಾನ್ ಸೀತಾದೇವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹನುಮಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಂಧೂರ ಏನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಸಿಂಧೂರವಾಗಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹನುಮಾನ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿ ತುಂಬ ಸಿಂಧೂರವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಿದು ಅವನು ರಾಮನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಮನವರು ಹನುಮಾನ್ ಹೋಗಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾವತಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹತ್ತರೆ ಹನುಮಾನ್ ಏನಿದ್ರು ಬೈ ತುಂಬ ಸಿಂಧೂರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸಿಂಧೂರ ಇರ್ತದೆ ಪತಿಗೆ ಆಯುಧ ಜಾಗೃತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಆಯುಧ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಬೈ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯ ಹನುಮಾನ್ ಅವನು ಸೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅವನು ಗಂಧರಾಜನ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ವತವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಸಂಜೀವಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಹನುಮಾನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಹನುಮಾನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಪಾಂಡವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಜಾತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡವರು ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಅರ್ಜುನ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಆ ಸತ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಒಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಮಲಗೋದು ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರ ದೇವಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೀತಾವಧಿಯಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಖ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಶ್ರಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಅರ್ಜುನ ಪಾಂಡವರಿಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಉದ್ದವ ಉದ್ದವ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಾಯಿತು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಉದ್ಧವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೇರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾರಾಯಣಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಲಲಿತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಆ ಪ್ರೇರ ಸೇವೆಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗೋಪಿಯರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಈಗ ವೈದ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ ಜನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಹಣ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಈ ಒಬ್ಬರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಕಾಯಿಯ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೊರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರಥ ನೀಡುತ್ತೋ ಆ ಮಧು ರಥವನ್ನ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಧು ರಥ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕೇ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಭಗವಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೇ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮ. ಶುದ್ಧ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಗೋಪಿಯವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಗೋಪಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಜವಾದಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಥುರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಗೋಪಿಯವರು ಕೃಷ್ಣನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಉದ್ಧವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸಾಮ ಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಹೋದರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವೃದ್ಧಿನ ವೃದ್ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಯರ ಮಹಿಮ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಉದ್ಧವ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶಿಷ್ಯ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಗೋಪಿಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಆ ಪ್ರೇಮ ಜ್ಞಾನದ ಆ ಪೇಟ ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀನಿ, ಗೋಪಿಯರ ಕಣ ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆ ಗೋಪಿಯರ ಪಾಡದೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜನಾಗೆ ಒಂದು ಪಾಡದೋಡಿಯನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಕೃಷ್ಣನೆ ಇನ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬಸಿ ಭೂತ ಹೋಗ ಗೋಪಿಯು ಸೇ ಕಹ ನ ಪಾಯಹಂ ನಿರವತ್ಯ ಸಂಯುಜ ಸುಸಾಧು ಭಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಶಾಪಿವ ಮಾ ದುರ್ಜನ ಗ್ರೀಹ ಶೃಂಖಲ ಸಂಪೃಕ್ಷತತ್ವ ಪ್ರತಿಜಾತ. ಓ ಗೋಪಿಯೋ ಗೋಪಿಯೋ, ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜೈಸಿ ಲಂಬಿ ಆಯು ಪಾಕರ್ಕೆ ಭೀ ತುಮಹಾರಾ ಋಣ ನಹೀಂ ಚುಕಾ ಸಕ. ತುಮನೆ ಹಮಾರೆ ಲಿಯೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುತ್ರ ಪರಿವಾರ ಪತಿ ಸಬ್ ಕುಛ ಛೋಡ್ ಕರ್ಕೆ ಲೋಕ ಧರ್ಮ ವೇದ ಧರ್ಮ ಸಭಿ ಕುಛ ಜಲಾಂಜಲಿ ದೇ ಕರ್ಕೆ ಹಮಾರೆ ಚರಣೋ ಭೀ ಆಯೆ. ಮೇ ಕಿಸಿ ಕೋ ಛೋಡ್ ನಹೀಂ ಸಕ್ತಾ, ಕೋಯಿ ಭೀ ಜೈಸಾ ಭೀ ಜೇ ಜಥಾ ತಾಂ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಮೇ ಕಹತಾ ಜೋ ಕುಛ ಜೋ ಕೋಯಿ ಜಿಸ್ ರೂಪ ಮೇ ಭಜನ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಮೇ ಭೀ ಉಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ, ಇಸ್ಲಿಯೆ ನಹೀಂ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ. ಇನ್ ಗೋಪಿಯೋ ಸೇ ಭೀ ರಾಧಿಕಾ ಅಂತರ್ಧ್ಯಾನ ಹೋಗಿ
कृष्ण उनको मनाने के लिए सबको छोड़ करके चले, इसलिए राधा जी की महिमा बहुत बड़ी है, उनका प्रेम ही सर्वोत्तम प्रेम है। हम लोग यदि उनकी दासी हो सके तो इसकी चेष्टा करनी चाहिए, इसके लिए साधन भजन करना चाहिए। वो होगा एकमात्र गोपियों के अनुगत्य में सेवा, तभी हो सके। यही जीव का सबसे बड़ा परमार्थ है। प्रसंग बसता है, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आज कुछ लोग रीति पद्धति मानने लगे हैं, गुरु परंपरा को छोड़कर रीति परंपरा लेते हैं, किंतु रीति परमार्थ से संबंध कुछ नहीं है। रीति में परमार्थ का कोई भी संबंध नहीं है, वो केवल यज्ञ कराएंगे, दक्षिणा ले लेंगे और चले जाएंगे। गुरु परंपरा कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव गोस्वामी, इसके बाद में मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से होते हुए ईश्वरपुरी पाद, माध्वेन्द्रपुरी पाद, और इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन इत्यादि, षड् गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, और आज तक की परंपरा से वही आ रही है धारा। यदि दीक्षा परंपरा, गुरु परंपरा की धारा न हो तो उसे भगवत भजन भक्ति कभी नहीं आ सकती। उन्हीं चार संप्रदायों में से श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी से वल्लभाचार्य इत्यादि, और चतुचंद से निम्बादित्य इत्यादि संप्रदायें आई, और गुरु परंपरा से वही तत्व ज्ञान मिलता है। दीक्षा होती है, दीक्षा से होता है दिव्य ज्ञान। कृष्ण के साथ में हमारा जीवों का क्या संबंध है, गुरु देते हैं रीतिर्थों का, इसलिए इस संबंध में परमार्थ से कोई संबंध नहीं। यदि वो गुरु परंपरा नहीं मानते हैं तो यह भक्ति का विरोधी है। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
Translation, translation.